ये दुनिया सैकड़ों कहानियों का मजमुआ है। हर शख्स में एक कहानी है और उस कहानी में कई कहानियां। मानो कहानियों का बड़ा सा ढेर हो जिसमें कुछ कहानियां अनसुनी रह जाती हैं। स्टोरी टेलिंग की जब बात हो रही है, aren't we all crazy about stories? बचपन में चाहे वो नानी अम्मी का कहानियां सुनाना हो या कार्टून्स में मजेदार कहानियों का लुत्फ उठाना हो, चाहे वो फिल्म्स हो, रेडियो शोज हो या दोस्तों के साथ गप्पे मारना क्यों ना हो, उनमें एक कहानी जरूर होती है और उसी से हमारी दिलचस्पी कायम रहती है। आदाब, मैं हूँ फौकिया वाजिद और सोच कास्ट पे आपके सामने हाजिर है उर्दू पॉडकास्ट आओ सुने, जिसमें हम आपको कुछ दिलकश कहानियों से रूबरू करवाएंगे। खालिद मियां, सादत हसन मंटो। मुमताज ने सुबह सवेरे उठकर हस्बे मामूल तीनों कमरे में झाड़ू दी। कोने खुदरों से सिगरेटों के टुकड़े, माचिस की जली हुई तीलियां और इसी तरह की और चीजें ढूंढ ढूंढ कर निकाली। जब तीनों कमरे अच्छी तरह साफ हो गए तो उसने इत्मीनान की सांस ली। उसकी बीवी बाहर सहन में सो रही थी, बच्चा पंगुड़े में था। मुमताज हर सुबह सवेरे उठकर सिर्फ इसलिए खुद तीनों कमरे में झाड़ू देता ताकि उसका लड़का खालिद अब चलता फिरता था और आम बच्चों के मानिंद हर चीज जो उसके सामने आए उठाकर मुंह में डाल लेता था। मुमताज हर रोज तीनों कमरे बड़े एहतियात से साफ करता, मगर उसको हैरत होती जब खालिद फर्श पर उसे अपने छोटे छोटे नाखूनों की मदद से कोई ना कोई चीज उठा लेता। फर्श का प्लास्टर कई जगह उखड़ा हुआ था, जहां कूड़े करकट के छोटे छोटे जर्रे फंस जाते थे। मुमताज अपनी तरफ से पूरी सफाई करता, मगर कुछ ना कुछ बाकी रह जाता जो उसका पलौठी का बेटा खालिद, जिसकी उम्र अभी एक बरस की नहीं हुई थी, उठाकर अपने मुंह में डाल लेता। मुमताज को सफाई का खपत हो गया था। अगर वो खालिद को कोई चीज फर्श पर से उठाकर अपने मुंह में डालते देखता तो वो खुद को उसका मुलजिम समझता। अपने आप को दिल ही दिल में कोसता कि उसने क्यों बदएहतियाती की। खालिद से उसको प्यार ही नहीं, इश्क था। लेकिन अजीब बात है कि जूझू खालिद की पहली सालगिरह का दिन नजदीक आता था, उसका ये वहम यकीन की सूरत इख्तियार करता जाता था कि उसका बेटा एक साल का होने से पहले पहले मर जाएगा। अपने इस खौफनाक वहम का जिक्र मुमताज अपनी बीवी से भी कर चुका था। मुमताज के मुतालिक ये मशहूर था कि वो औहाम का बिल्कुल कायल नहीं। उसकी बीवी ने जब पहली बार उसके मुंह से ऐसी बात सुनी तो कहा, आप और ऐसे वहम, अल्लाह के फजलो करम से हमारा बेटा 100 साल जिंदा रहेगा। मैंने उसकी पहली सालगिरह के लिए ऐसा एहतमाम किया है कि आप दंग रह जाएंगे। ये सुनकर मुमताज के दिल को एक धक्का सा लगा था। वो कब चाहता था कि उसका बेटा जिंदा ना रहे, लेकिन उसके वहम का क्या इलाज था। खालिद बड़ा तंदुरुस्त बच्चा था। सर्दियों में जब नौकर एक दफा उसको बाहर सैर के लिए ले गया तो वापस आकर उसने मुमताज की बीवी से कहा, बेगम साहब, आप खालिद मियां के गालों पर सुर्खी न लगाया करें, किसी की नजर लग जाएगी। ये सुनकर उसकी बीवी बहुत हंसी थी। बेवकूफ, मुझे क्या जरूरत है सुर्खी लगाने की, माशाल्लाह इसके गाल ही कुदरती लाल हैं। सर्दियों में खालिद के गाल बहुत सुर्ख रहते थे, मगर अब गर्मियों में कुछ जर्दी माइल हो गई थी। उसको पानी का बहुत शौक था, चुनांचे वो अंगड़ाई लेकर उठता और दूध की बोतल पी लेता तो दफ्तर जाने से पहले मुमताज उसको पानी की बाल्टी में खड़ा कर देता। देर तक वो पानी के छींटे उड़ा उड़ा कर खेलता रहता। मुमताज और उसकी बीवी खालिद को देखते और बहुत खुश होते, लेकिन मुमताज की खुशी में गम का एक बरकी धक्का सा जरूर होता। वो सोचता, खुदा मेरी बीवी की जुबान मुबारक करे, लेकिन ये क्या है कि मुझे उसकी मौत का खटका रहता है। ये वहम क्यों मेरे दिलो दिमाग में बैठ गया है कि वो मर जाएगा। क्यों मरेगा, अच्छा भला सेहतमंद है, अपनी उम्र के बच्चों से कहीं ज्यादा सेहतमंद। मैं यकीनन पागल हूँ, इससे मेरी हद से ज्यादा बढ़ती हुई मोहब्बत दरअसल इस वहम का बाइस है। लेकिन मुझे इससे इतनी ज्यादा मोहब्बत क्यों है, क्या सारे बाप इसी तरह बच्चों से प्यार करते हैं? क्या हर बाप को अपनी औलाद की मौत का खटका लगा रहता है? मुझे आखिर हो क्या गया है? मुमताज ने जब हस्बे मामूल तीनों कमरे अच्छी तरह साफ कर दिए तो वो फर्श पर चटाई बिछा कर लेट गया। ये उसकी आदत थी। सुबह उठकर झाड़ू वगैरह देकर वो गर्मियों में जरूर आधे घंटे के लिए चटाई पर लेटा करता था। बगैर तकिए के इस तरह उसको लुत्फ महसूस होता था। लेट कर वो सोचने लगा, परसों मेरे बच्चे की पहली सालगिरह है। अगर ये बखैर व आफियत गुजर जाए तो मेरे दिल का सारा बोझ हल्का हो जाएगा। ये मेरा वहम बिल्कुल दूर हो जाएगा। अल्लाह मियाँ, ये सब तेरे हाथ में है। उसकी आंखें बंद थी। दफतन उसने अपने नंगे सीने पर बोझ महसूस किया। आंखें खोली तो देखा खालिद है। उसकी बीवी पास खड़ी थी। उसने कहा, सारी रात बेचैन सा रहा है, सोते में जैसे डर डर के कांपता रहा है। खालिद मुमताज के सीने पर जोर से कांपा। मुमताज ने उस पर हाथ रखा और कहा, खुदा मेरे बेटे का मुहाफिज हो। मुमताज की बीवी ने खफगी आमेज लहजे में कहा, तौबा, आपको बस वहमों ने घेर रखा है। हल्का सा बुखार है, इंशाल्लाह दूर हो जाएगा। ये कहकर मुमताज की बीवी कमरे से चली गई। मुमताज ने हौले हौले बड़े प्यार से खालिद को थपकना शुरू किया, जो उसकी छाती पर औंधा लेटा था और सोते में कभी कभी कांप उठता था। थपकने से वो जाग पड़ा। आहिस्ता आहिस्ता अपनी बड़ी बड़ी सियाह आंखें खोली और बाप को देखकर मुस्कुराया। मुमताज ने उसका मुंह चूमा। क्यों खालिद मियाँ, क्या बात है, आप कांपते क्यों थे? खालिद ने मुस्कुराकर अपना उठा हुआ सर बाप के छाती पर गिरा दिया। मुमताज ने फिर उसको थपकना शुरू कर दिया। दिल में वो दुआएं मांग रहा था कि उसके बेटे की उम्र दराज हो। उसकी बीवी ने खालिद की पहली सालगिरह के लिए बड़ा एहतमाम किया था। अपनी सारी सहेलियों से कहा था कि वो इस तकरीब पर जरूर आए। दर्जी से खास तौर पर उसकी सालगिरह के कपड़े सिलवाए थे। दावत पर क्या क्या चीज होगी ये सब सोच लिया था। मुमताज को ये ठाट पसंद नहीं था। वो चाहता था कि किसी को खबर ना हो और सालगिरह गुजर जाए, खुद उसको भी पता ना चले और उसका बेटा एक बरस का हो जाए। उसको इस बात का इल्म सिर्फ उस वक्त हो जब खालिद एक बरस और कुछ दिनों का हो गया हो। खालिद अपने बाप की छाती पर से उठा। मुमताज ने उसे मोहब्बत में डूबे लहजे में कहा, खालिद बेटा, सलाम नहीं करोगे अब्बा जी को? खालिद ने मुस्कुराकर हाथ उठाया और अपने सर पर रख दिया। मुमताज ने उसको दुआ दी, जीते रहो। लेकिन ये कहते हुए उसके दिल पर उसके वहम की जर्ब लगी और वो गमो फिक्र के समंदर में गर्क हो गया। खालिद सलाम करके कमरे से बाहर निकल गया। दफ्तर जाने में अभी काफी वक्त था। मुमताज चटाई पर लेटा रहा और अपने वहम को दिलो दिमाग से महव करने की कोशिश करता रहा। इतने में बाहर सहन से उसकी बीवी की आवाज आई, मुमताज साहब इधर आइए। आवाज में शदीद घबराहट थी। मुमताज चौंक कर उठा, दौड़ कर बाहर गया। देखा कि उसकी बीवी खालिद को गुसल खाने के बाहर गोद में लिए खड़ी हुई है और वो उसकी गोद में बल पे बल खा रहा है। मुमताज ने उसको अपनी बाहों में ले लिया और बीवी से जो कांप रही थी पूछा, क्या हुआ? उसकी बीवी ने खौफजदा लहजे में कहा, मालूम नहीं, पानी से खेल रहा था, मैंने नाक साफ की तो धुरा हो गया। मुमताज की बाहों में खालिद ऐसे बल खा रहा था जैसे कोई उसे कपड़े की तरह निचोड़ रहा है। सामने चारपाई पड़ी थी, मुमताज ने उसको वहां लिटा दिया। मियाँ बीवी सख्त परेशान थे। वो पड़ा बल पे बल खा रहा था और उन दोनों के औसान खता थे कि वो क्या करें। थपकाया, चूमा, पानी के छींटे मारे, मगर उसका तशन्नुज दूर न हुआ। थोड़ी देर के बाद खुद ब खुद दौरा आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो गया और खालिद पर बेहोशी सी तारी हो गई। मुमताज ने समझा मर गया है, चुनांचे उसने अपनी बीवी से कहा, खत्म हो गया? वो चिल्लाई, लाहौल वाला, कैसी बातें मुंह से निकालते हैं, कन्वुलशन थी, खत्म हो गई, अभी ठीक हो जाएगा। खालिद ने अपनी मुरझाई हुई बड़ी बड़ी सियाह आंखें खोली और अपने बाप की तरफ देखा। मुमताज की सारी दुनिया जिंदा हो गई। बड़े ही दर्द भरे आवाज से उसने खालिद से कहा, क्यों खालिद बेटा, क्या हुआ आपको? खालिद के होंठों पर तशन्नुद ज़दा मुस्कुराहट नामुदार हुई। मुमताज ने उसको गोद में उठा लिया और अंदर कमरे में ले गया। लेटाने ही वाला था कि दूसरी कन्वल्शन आई। खालिद फिर बल खाने लगा, जिस तरह मिर्गी का दौरा होता है। ये तशन्नुज भी उसी किस्म का था। मुमताज को ऐसा महसूस होता था कि खालिद नहीं बल्कि वो इस अजियत के शिकंजे में कसा जा रहा है। दूसरा दौरा खत्म हुआ तो खालिद और ज्यादा मुरझा गया। उसकी बड़ी बड़ी सियाह आंखें ढस गईं। मुमताज उससे बातें करने लगा। खालिद बेटे, ये क्या होता है आपको? खालिद मियां, उठो ना, चलो फिरो। खालिदी, मक्खन खाएंगे आप? खालिद को मक्खन बहुत पसंद था, मगर उसने ये सुनकर अपना सर हिलाकर हाँ न की। लेकिन जब मुमताज ने कहा, बेटे गोलो खाएंगे आप, तो उसने बड़े नहीं अंदाज में नहीं के तौर पर अपना सर हिलाया। मुमताज मुस्कुराया और खालिद को अपने गले से लगा लिया। फिर उसको अपनी बीवी के हवाले किया और उससे कहा, तुम इसका ध्यान रखो, मैं डॉक्टर लेकर आता हूँ। डॉक्टर साथ लेकर आया तो मुमताज की बीवी के होश उड़े हुए थे। उसकी गैर हाजिरी में खालिद पर तशन्नुज के 3 और दौरे पड़ चुके थे। उनके बायस वो बेजान हो गया था। डॉक्टर ने उसे देखा और कहा, तरद्दुद की कोई बात नहीं, ऐसी कन्वल्शन बच्चों को उमूमन आया करती हैं। इसकी वजह दांत हैं, मैदे में क्रम वगैरह हों तो वो भी इसका बायस हो सकते हैं। मैं दवा लिख देता हूँ, आराम आ जाएगा, बुखार तेज नहीं है, आप कोई फिक्र ना करें। मुमताज ने दफ्तर से छुट्टी ले ली और सारा दिन खालिद के पास बैठा रहा। डॉक्टर के जाने के बाद उसको 2 मर्तबा और दौरे पड़े। इसके बाद वो निढाल लेटा रहा। शाम हो गई तो मुमताज ने सोचा, शायद अब अल्लाह का फजल हो गया है, इतने अरसे में कोई कन्वल्शन नहीं आई, खुदा करे रात इसी तरह कट जाए। मुमताज की बीवी भी खुश थी। अल्लाह ताला ने चाहा तो कल मेरा खालिद दौड़ता फिरेगा। रात को चूंकि मुकर्ररा औकात पर दवा देनी थी, इसलिए मुमताज चार पाई पर न लेटा कि शायद सो जाए। खालिद के पंगड़े के पास आराम कुर्सी रख कर वो बैठ गया और सारी रात जागता रहा, क्योंकि खालिद बेचैन था, काम काम कर बार बार जागता था, हरारत भी तेज थी। सुबह 7 बजे के करीब मुमताज ने थर्मामीटर लगा के देखा तो 104 डिग्री बुखार था। डॉक्टर बुलाया, उसने कहा, तरद्दुद की कोई बात नहीं, ब्रोंकाइटिस है, मैं नुस्खा लिख देता हूँ, 3-4 रोज में आराम आ जाएगा। डॉक्टर नुस्खा लिख कर चला गया। मुमताज दवा बनवा लाया, खालिद को एक खुराक पिलाई, मगर उसको तस्कीन न हुई। 10 बजे के करीब वो एक बड़ा डॉक्टर लाया। उसने अच्छी तरह खालिद को देखा और तसल्ली दी, घबराने की कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा। सब ठीक ना हुआ। बड़े डॉक्टर की दवा ने कोई असर न किया, बुखार तेज होता गया। मुमताज के नौकर ने कहा, साहब बीमारी वगैरह कोई नहीं, खालिद मियाँ को नज़र लग गई है, मैं एक तावीज़ लिखवा कर लाया हूँ, अल्लाह के हुक्म से यूं चुटकियों में असर करेगा। 7 कुओं का पानी इकट्ठा किया गया, उसमें यह तावीज़ घोल कर खालिद को पिलाया गया, कोई असर न हुआ। हम साई आई, वो एक यूनानी दवा तजवीज़ कर गई। मुमताज ये दवा ले आया, मगर उसने खालिद को न दी। शाम को मुमताज का एक रिश्तेदार आया, साथ उसके डॉक्टर था। उसने खालिद को देखा और कहा, मलेरिया है, इतना बुखार मलेरिया ही में होता है, आप इस पे बर्फ का पानी डालिए, मैं कुनैन का इंजेक्शन देता हूँ। बर्फ का पानी डाला गया, बुखार एकदम कम हो गया, दर्जे हरारत 98 डिग्री तक आ गया। मुमताज और उसकी बीवी की जान में जान आई, लेकिन थोड़े ही अरसे में बुखार बहुत ही तेज हो गया। मुमताज ने थर्मामीटर लगाकर देखा, दर्जे हरारत 106 तक पहुंच गया था। हमसाई आई, उसने खालिद को मायूस नजरों से देखा और मुमताज की बीवी से कहा, बच्चे की गर्दन का मनका टूट गया है। मुमताज और उसकी बीवी के दिल बैठ गए। मुमताज ने नीचे कारखाने से अस्पताल फोन किया। अस्पताल वालों ने कहा मरीज ले आओ। मुमताज ने फौरन टांगा मंगवाया, खालिद को गोद में लिया, बीवी को साथ बिठाया और अस्पताल का रुख किया। सारा दिन वो पानी पीता रहा था मगर प्यास थी कि बुझती ही नहीं थी। अस्पताल जाते हुए रास्ते में उसका हलक बेहद खुश्क हो गया। उसने सोचा उतरकर किसी दुकान से एक गिलास पानी पी लें, लेकिन खुदा मालूम कहाँ से ये वहम एकदम उसके दिमाग में आन टपका। देखो अगर तुमने पानी पिया तो तुम्हारा खालिद मर जाएगा। मुमताज का हल्क सूख के लकड़ी हो गया मगर उसने पानी न पिया। अस्पताल के करीब टांगा पहुंचा तो उसने सिगरेट सुलगाया। दो ही कश लिए थे तो उसने एकदम सिगरेट फेंक दिया। उसके दिमाग में ये वहम गूंजा था, मुमताज सिगरेट ना पियो, तुम्हारा बच्चा मर जाएगा। मुमताज ने टांगा ठहराया। उसने सोचा ये क्या हमाकत है, ये वहम सब फिजूल है, सिगरेट पीने से बच्चे पर क्या आफत आ सकती है। टांगे से उतरकर उसने सड़क पार से सिगरेट उठाया। वापस टांगे में बैठकर जब उसने कश लेना चाहा तो किसी नामालूम ताकत ने उसे रोक लिया। नहीं मुमताज ऐसा ना करो, खालिद मर जाएगा। मुमताज ने सिगरेट जोर से फेंक दिया। टांगे वाले ने घूर के उसको देखा। मुमताज ने महसूस किया कि जैसे उसको उसकी दिमागी कैफियत का इल्म है और वो उसका मजाक उड़ा रहा है। अपनी खिफत दूर करने की खातिर उसने टांगे वाले से कहा, खराब हो गया था सिगरेट। उसके दिलो दिमाग में हलचल सी मच गई। टांगा अस्पताल के फाटक में दाखिल हुआ तो उसने सिगरेट उंगलियों में मसल कर फेंक दिया। उसको अपने ऊपर बहुत तरस आया कि औहाम का गुलाम बन गया है। अस्पताल वालों ने फौरन ही खालिद को दाखिल कर लिया। डॉक्टर ने देखा और कहा निमोनिया है, हालत मखदूश है। खालिद बेहोश था, माँ उसके सरहाने बैठी वीरान निगाहों से उसको देख रही थी। कमरे के साथ गुसल खाना था। मुमताज को सख्त प्यास लग रही थी, नल खोलकर ओग से पानी पीने लगा और फिर वही वहम उसके दिमाग में गूंजा, मुमताज ये क्या कर रहे हो तुम, मत पानी पियो, तुम्हारा खालिद मर जाएगा। मुमताज ने दिल में इस वहम को गाली दी और इंतकामन इतना पानी पिया कि उसका पेट अफर गया। पानी पीकर गुसल खाने से बाहर आया तो उसका खालिद उसी तरह मुरझाया हुआ बेहोश अस्पताल के आहनी पलंग पर पड़ा था। वो चाहता था कि कहीं भाग जाए, उसके होश आवाज गायब हो जाए, खालिद अच्छा हो जाए और वो इसके बदले निमोनिया में गिरफ्तार हो जाए। मुमताज ने महसूस किया कि खालिद अब पहले ही से ज्यादा जर्द है। उसने सोचा ये सब उसके पानी पी लेने का बाइस है, अगर वो पानी ना पीता तो जरूर खालिद की हालत बेहतर हो जाती। उसको बहुत दुख हुआ, उसने खुद को बहुत लानत मलामत की, मगर फिर उसको ख्याल आया कि जिसने ये बात सोची थी वो मुमताज नहीं कोई और था। और कौन था, क्यों उसके दिमाग में ऐसे वहम पैदा होते थे। प्यास लगती थी, पानी पी लिया, इससे खालिद पर क्या असर पड़ सकता है। खालिद जरूर अच्छा हो जाएगा, परसों उसकी सालगिरह है, इंशाल्लाह खूब ठाट से मनाई जाएगी। लेकिन फौरन ही उसका दिल बैठ गया। कोई आवाज उसे कहती खालिद एक बरस का होने ही नहीं पाएगा। मुमताज का जी चाहता कि वो इस आवाज की जबान पकड़ ले और उसे गुद्दी से निकाल दे, मगर ये आवाज तो खुद उसके दिमाग में पैदा होती थी। खुदा मालूम कैसे होती थी, क्यों होती थी। मुमताज इस कदर तंग आ गया था कि उसने दिल ही दिल में अपने औहाम से गिड़गिड़ा कर कहा, खुदा के लिए मुझ पर रहम करो, क्यों तुम मुझ गरीब के पीछे पड़ गए हो। शाम हो चुकी थी, कई डॉक्टर खालिद को देख चुके थे, दवा दी जा रही थी, कई इंजेक्शन भी लग चुके थे, मगर खालिद अभी तक बेहोश था। दफतर मुमताज के दिमाग में ये आवाज गूंजी, तुम यहां से चले जाओ, फौरन चले जाओ, वरना खालिद मर जाएगा। मुमताज कमरे से बाहर चला गया, अस्पताल से बाहर चला गया। उसके दिमाग में आवाजें गूंजती रहीं। उसने अपने आप को उन आवाजों के हवाले कर दिया, अपनी हर जुम्बिश अपनी हर हरकत उनके हुक्म के सपुर्द कर दी। ये उसे एक होटल में ले गईं। उन्होंने उसको शराब पीने के लिए कहा। शराब आई तो उसे फेंक देने का हुक्म दिया। मुमताज ने हाथ से गिलास फेंक दिया तो और मंगवाने के लिए कहा। दूसरा गिलास आया तो उसे भी फेंक देने के लिए कहा। शराब और टूटे हुए गिलासों का बिल अदा करके मुमताज बाहर निकला। उसको यूं महसूस होता था कि चारों तरफ खामोशी ही खामोशी है, सिर्फ उसका दिमाग है जहां शोर बरपा है। चलता चलता वो अस्पताल पहुंच गया। खालिद के कमरे का रुख किया तो उसे हुक्म हुआ, मत जाओ उधर, तुम्हारा खालिद मर जाएगा। वो लौट आया, घास का मैदान था, वहां एक बेंच पड़ी थी, उस पर लेट गया। रात के 10 बज चुके थे, मैदान में अंधेरा था, चारों तरफ खामोशी थी। कभी कभी किसी मोटर के हॉर्न की आवाज उस खामोशी में खराश पैदा करती हुई गुजर जाती। सामने ऊंची दीवार में अस्पताल का रोशन क्लॉक था। मुमताज खालिद के मुतालिक सोच रहा था, क्या वो बच जाएगा? ये बच्चे क्यों पैदा होते हैं जिन्हें मरना होता है? वो जिंदगी क्यों पैदा होती है जिसने इतनी जल्दी मौत के मुंह में जाना होता है? खालिद जरूर, एकदम उसके दिमाग में एक वहम फूटा। बेंच पर से उतरकर वो सजदे में गिर गया। हुक्म था इसी तरह पड़े रहो जब तक खालिद ठीक न हो जाए। मुमताज सजदे में पड़ा रहा। वो दुआ मांगना चाहता था मगर हुक्म था कि मत मांगो। मुमताज की आंखों में आंसू आ गए। वो खालिद के लिए नहीं, अपने लिए दुआ मांगने लगा। खुदाया मुझे इस अजियत से नजात दे, तुझे अगर खालिद को मारना है तो मार दे, ये मेरा क्या हशर कर रहा है तू? दफतन उसे आवाजें सुनाई दी। उससे कुछ दूर दो आदमी कुर्सियों पर बैठे खाना खा रहे थे और आपस में बातें कर रहे थे। बच्चा बड़ा खूबसूरत है, माँ का हाल मुझसे देखा नहीं गया। बेचारी हर डॉक्टर के पांव पड़ रही थी। हमने अपनी तरफ से तो हर मुमकिन कोशिश की, बच्चा मुहाल है। मैंने यही कहा था माँ से कि दुआ करो बहन। एक डॉक्टर ने मुमताज की तरफ देखा जो सजदे में पड़ा था। उसको जोर से आवाज दी, ये क्या कर रहा है तू, इधर आ। मुमताज उठकर दोनों डॉक्टरों के पास गया। एक ने उससे पूछा, कौन हो तुम? मुमताज ने खुश होठों पर जबान फेर कर जवाब दिया, मैं एक मरीज। डॉक्टर ने सख्ती से कहा, मरीज हो तो अंदर जाओ, यहाँ मैदान में डंडा क्यों पेलते हो? मुमताज ने कहा, जी मेरा बच्चा है उधर उस वार्ड में। वो तुम्हारा बच्चा है जो? जी हाँ, शायद आप उसी की बातें कर रहे थे। वो मेरा बच्चा है खालिद, आप उसके बाप हैं? मुमताज ने अपना गमो अंदोह से भरा हुआ सर हिलाया, जी हाँ मैं उसका बाप हूँ। डॉक्टर ने कहा, आप यहाँ बैठे हैं, जाइए, आपकी वाइफ बहुत परेशान है। जी अच्छा, कहकर मुमताज वार्ड की तरफ रवाना हुआ। सीढ़ियाँ तय करके जब ऊपर पहुँचा तो कमरे के बाहर उसका नौकर रो रहा था। मुमताज को देखकर और ज्यादा रोने लगा, साहब खालिद मियाँ फौत हो गए। मुमताज अंदर कमरे में गया, उसकी बीवी बेहोश पड़ी थी। एक डॉक्टर और नर्स उसको होश में लाने की कोशिश कर रहे थे। मुमताज पलंग के पास खड़ा हो गया। खालिद आंखें बंद किए पड़ा था, उसके चेहरे पर मौत का सुकून था। मुमताज ने उसके रेशमी बालों पर हाथ फेरा और दिल चीर देने वाले लहजे में उससे पूछा, खालिद मियां गागो खाएंगे आप? खालिद का सर नहीं में न हिला। मुमताज ने फिर दरख्वास्त भरे लहजे में कहा, खालिद मियां मेरे वहम ले जाएंगे अपने साथ? मुमताज को ऐसा महसूस हुआ कि जैसे खालिद ने सर हिलाकर हाँ की है।
लाइक दिस सोचकास्ट, ट्यून इन फॉर मोर विद द सोचकास्ट ऐप फ्रॉम द गूगल प्ले स्टोर।
आशा करते हैं कि आपको ये सोच कास्ट बहुत पसंद आया। अगर कुछ कहना है इसके बारे में तो लिखकर बताइए हमें अपने फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज पर। सोच कास्ट ढूंढिए। अगर आपको अपनी सोच दुनिया को सुनानी हो तो सोच कास्ट करो। सोच कास्ट।